सब प्रकार से देहात्म और वाक स्थितों ब्रह्मा जी जो है उन्होंने जो परमात्मा ने नई जो सृष्टि की है ये सृष्टि नित्य नहीं है, जगत है। ये तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ये बदलती है, इसका सब लुप्त हो जाएगा और अंत में फिर इसकी सृष्टि होगी। इसलिए पुनः पुनः सृष्टि होने से इसको कहते हैं अर्वाच नवी। तो ब्रह्मा जी ये सृष्टि करते हैं वो बड़े कठिन है, इसलिए सुंदर से सुंदर रूप बनाते हैं। पहले उन्होंने मछली इत्यादि करो चीटी मकोड़े टोकोड़े ये सब बनाया, उनसे प्रसन्नता नहीं। वृक्ष इत्यादि को बनाया, जलकर को बनाया, फलकर को बनाया, कभी प्रसन्नता नहीं। जब किसी प्रकार से नहीं प्रसन्नता है तो गोरों को बनाया, गोरे भी बड़े सुंदर बड़े गाय इत्यादि बोला, फिर उनसे भी श्रेष्ठ घोड़ों को बना। घोड़ों के बाद में कभी उनका प्रसन्न चित्त नहीं हुआ। तब एक जोड़ा स्त्री पुरुष कश्यप और अधिक मनुशत्रु का मनुशत्र का पहले है मनुशत्र, यही सबसे श्रेष्ठ उनकी सृष्टि। किंतु इन लोगों को यह प्रसन्नता नहीं है, इसलिए सुखदेव जी स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि उस समय विधाता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रूप वर्णन है कृष्ण। इतना सुंदर अवसर मनुष्य रूपा इत्यादि हुए, किंतु मूल स्वरूप ये दोनों है राधा और कृष्ण, ये कृष्ण के लिए बतला। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की जितनी चातुरी थी कौशल था एकत्र करके कृष्ण का ये रूप बनाया, जिसको देखने से ही सभी ऐसा कहूं जो भी चराय से लड़के नयन मंग कृष्ण रूप लोक प्राय निवासी सफल जगत के सृष्टि मध्य अति चमत्कार विद्याकार कौशल एक करी साधक उनका भी चिंतन। जस्यान राग पूर्व हास राश नीला रूप प्रतिलत प्रमाण ब्रजस्त्रियो दृष्टि अनुप्रवित धियो अवतस्तु किलक सेवा। तो यदि कोई श्रद्धा से इस रूप को देखे आकर्षित होगा किंतु उसमें उतना आनंद नहीं होगा। श्रद्धा के बाद में जो निष्ठा के साथ में उनको तो दर्शन नहीं है, जब आसक्ति में कोई दर्शन करे और आसक्ति के बाद में प्रेम और प्रेम से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग स्थिति में यदि उनका दर्शन तो उसका कुछ कुछ आनंद। तो इसलिए कह रहे हैं अनुराग हास रास लीलाओं पर श्लोकन है संपूजित प्रजरूपी नित्य दर्शन सर्वकृत समाधान अंतरे मान्य कृष्ण रूपे मुख्य रहे। कृष्ण को देखने से ही एकदम स्थिर होकर के बस देखने लगते। किसी ने कहा आज हमने कृष्ण को सर्वांग दर्शन, तो श्रीमती जी के वो विशाखा जी उन्होंने कहा जिसे वह तुम्हारा तो बड़ा स्वभाव है कृष्ण के सर्वांग का दर्शन, हमारी शक्ति तो यदि कृष्ण के चरणों को देखती है तब वो ही शक्ति उनकी लग जाती है और कहीं नहीं दर्शन, इसलिए तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। यदि मुखारविंद की तरफ में देखा तो बस देख लिया सुन करके वो शक्ति बची। इसलिए कहते हैं मुग्ध नेत्रे रहे गए, देखते देखते ही रह गई, कृष्ण भी चले गए, गाय भी चली गई, दोस्त भी चला गया और वो चुपचाप मानो खड़ी बैठे ही देखते ऐसा इनका रूप है। इसका वर्णन आज राधिकारी सदा।
मास्टर से साफ किया, उसने गंदी चीजें पड़ी हुई साफ तो कर दिया, किंतु उसने सुंदर खाने की चीजें साफ वर्थक चीजों को नहीं उसने परोसा, क्यों खाली रहने से मास्क करके आपके सामने दे दिया तो भरेगा, उसे विश्वाचार से भी नहीं भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के बदले कोई दूसरी चीज परोस दी गई, क्या कि उसको सबसे पहले बतलाया आरोप शिक्षा भक्ति। आरोप शिक्षा भक्ति को समझने के लिए यह समझ लीजिए तो शिक्षा भक्ति किसको कर रहे तब फिर आरोप बिना स्वरूप शिक्षा के सुख शिक्षा वो कहते हैं जिसके द्वारा हमारी समस्त इंद्रियां बाहरी और जितनी भी इंद्रियां समस्त इंद्रियों से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कल्पी वाचिकी और मानसिक हम भावात्मिका जितनी भी हमारी जो कुछ एनर्जी है वो सचमुच में कृष्ण के लिए लगे। उन लगने वालों में से उन्होंने बतलाया कि नौ प्रकार की भक्ति विशेष है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाप सेवन अर्चन वंदन दास्यम सत्यम। ये नौ प्रकार की क्या करो, भगवान के संबंध में सुनो, तुम कौन चीज है, आत्मा क्या चीज है, तुम क्या है, ये समझो भगवान क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, पहले ये सब अपने आप समझो। इसके पीछे में भगवान का नाम रूप रूप लीला का श्रवण, श्रवण को पहले कैसे समझो, उनके चरित्र का अनुसरण करते हुए करो, जिनका संग कर रहे हो, जिसको अपना जीवन समर्पण कर रहे हो, उनका चरित्र आदर्श है कि नहीं भरेंगे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाठ अर्चन वर्णन करते हैं या नहीं, पहले ये देते हैं और सचमुच में वो भक्ति करते हैं कि नहीं, तो उनका संग करके उनसे संग, और इसके बाद में कीर्तन, इसके बाद में उनका चिंतन, इसके बाद में दास्य भाव से उनकी सेवा करो, कीर्तन विष्णु स्मरण पादुषमन अर्चनम वंदनम वंदना दर्शन सत्य आत्म उनके चरण, ये जो नौ प्रकार की चीज ये प्रारंभ में करो गुरु जी के चरणों में वैष्णव के चरणों में अन्य लक्ष्य में रखकर अपने दो समापन कर, अब तक ये चीजों को नौ रूपों से ये भक्ति हुई थी, ये भी वैवी भक्ति हुई और यही जब खूब आगे बढ़ जाएगी तो वो शुद्ध उत्तम भक्ति होगी, प्रेमा भक्ति होगी। यह है स्वरूप सिद्धा, यह स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है, किसी एक चीज को हम आरोप करते हैं ये भी भक्ति, जैसे कोई चीज लेकर के दान कर दिया किसी को, ये स्वरूपता नौ नहीं है, इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कोई चीज सर्वर बनवाए ये श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण किताबों की बिक्री कर गीता भागवत वेद पर एक उदाहरण के लिए करता हूं, ये श्रवण कीर्तन उनमें से कौन चाहे, समझ रहे हैं, वो नहीं है, किंतु हमने इसको मान रखा है सचमुच में तिलकर। अच्छा ये मोहा भक्ति में से कौन सा है, ये थोड़ा सा अर्चन अर्चन ना करें और तिलक कर रहे तो क्या होगा, फलम भजन कोई इसका मतलब नहीं, हरिनाम भजन नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, अर्चन अर्चन नहीं करते हैं, हरिनाम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, तिलक लगा दिया गले में मोटी मोटी उससे क्या होगा, अवतर हम प्रचार कर रहे हैं, इसलिए नौका भक्ति ये होनी चाहिए स्वरूप, तब तो वो कुछ होगा जब इन तीनों से कर रहे हैं तो वो साधन भक्ति होगी, मन से द्वारा जब होगी तो भाव भक्ति, और आत्मा के द्वारा होगी तो वो प्रेमा भक्ति होगी। और इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी कार्य हैं वो सभी चिंता भक्ति यहां के आरोप तक। आरोप माने एक बबुल के पेड़ को हमने कांटे वाले वृक्ष को हमने कहा जैसे ये आम काटे थे, हो जाएगा नहीं होगा, हम कई पेड़ होना चाहिए, वैसे भक्ति होनी चाहिए, आरोप से नहीं काम चले। जैसे एक उदाहरण के लिए कहीं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ होना है, कहीं से ईंट ले आओ, बेदी बनाना है, और जमुना की मिट्टी लाओ, लकड़ी ले आओ, एक मन घी ले आओ, कम से कम तो 5 मन लकड़ी चाहिए, और उसका मसाला जौ कौ पंचमेवा और ये सब लाओ, और बेदी बनाओ, और आम का पत्ते से चारों तरफ में सजा दो, फूलों का बंदर बारिश इत्यादि बनाओ, इसको यज्ञ कहते हैं। किंतु इसके बिना यज्ञ होगा, एक आदमी ने सब कुछ कर दिया किंतु उसमें घी डाल करके और अग्नि में विष्णवे कृष्णाय ये जो अपने को मैं स्वाहा कर रहा हूं के चरण में ये काम हुआ, जब भी इसको कर कृष्ण की प्रीति के लिए जब करेंगे उसमें घी खा लेंगे और कहेंगे ऐसे ये कृष्ण को सब तो वो चल, किंतु मिट्टी जो ले आया, पत्थर ले आया, पानी ले आया, और पुरोहित को बुला लाया, उनकी पुस्तक ले आया, और रंग ले आया, और घी ले आया, वो क्या हुआ, निष्फल जाएगा? निष्फल तो नहीं जाएगा, उसी से यज्ञ होगा। किंतु एक आदमी वो यज्ञ न करके लाख कोटि जन्मों तक के उनको ही सामान लाता है और कहे कि हमारा ये यज्ञ है, वो यज्ञ, इसलिए इसको आरोप कर आरोप चिंता होती। किंतु यदि उसका उसे संबंध रहता है तब तो कुछ काम होते, कुछ काम, इसको काम निष्ठा भक्ति भी कर, कुछ श्रद्धा तो है, श्रद्धा है जरूर, और इसीलिए यह कर, किंतु श्रद्धा होने पर भी भक्ति नहीं है, अभी लौकिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा भक्ति से बहुत बहुत लाखों होती है। इसलिए यदि वो भगवत से संबंधित हुई और भगवान की तृप्ति के लिए यदि वो सब ला रहा है तब तो होता है। जैसे कहते हैं जब करोशी जब विदोषी जब तपस्तंते तब पुरुषवर पत्र और पुष्णा लाना ये भक्ति नहीं है, किंतु लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया जैसे प्रभु ये तुलसी का पत्ता आपको खाना पीना नहीं दे रहा, अच्छा अच्छा लड्डू है कल है ये सब ले देता क्योंकि उसमें पैसे खर्च होंगे, बिना पैसा का तुलसी मिल गया गाय कृष्णारायण, ये सब भक्ति नहीं है। यदि उसके पास में सब कुछ कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो अपने हृदय को निकाल करके तुलसी के पत्ते के रूप में करो, सबके लिए भक्ति सुचार हो जाए। इसलिए इसके बाद का श्लोक था जब पड़ोसी पत्रम पुष्पम फलम को तदम पशु अपहृतम स्नामी प्रजतात्मन अत शुद्ध हृदय से हमको प्रसन्न करने के प्रयत्न से यदि पत्रम पुष्पम फलम कोयम पानी भी एक चुल्लू पानी और एक तुलसी का पत्ता भगवान के लिए भगवान वैकुंठ छोड़ करके चले आए, इसे भगवान को पसंद करने के लिए तो भक्तिपूर्वक दिया तो को ले लेंगे, और यदि नहीं दिया तो जब पड़ोसी इत्यादि में आया तो अर्पण कर दिया भगवान को, तू अर्पण करने वाला कौन है ये विचार है, मैं हूं अर्पण तो ये तेरा है जो तू अर्पण कर रहा है, पत्रम पुष्पम अपने जब जगत जगत जब तपस्तय
अच्छा तू कौन है, तेरा है ये शरीर, तेरा है
शरीर तो तेरा,
ये पत्र पुरुष फूल है ये तुम्हारा है, तुम्हारा कहने के लिए क्या है? तो तू अपन करने वाला ठेकेदार कहां से बन गया? आ रहा है समझ में कि नहीं?
मेरा नियम क्या,
आपने पिताजी के पॉकेट से 50 रुपए चुरा लिए और चुरा करके उसमें से 10 रुपया निकाल करके मिठाई खर्च करके पिताजी के हाथ लेकर के, पिताजी मैं आपको समर्पण करता हूं, अर्पण करता हूं। अर्पण हुआ कि नहीं? पिताजी को दान दीजिए, 5 रुपए का दान पिताजी को दीजिए और मैया को, मैया तुम्हारे लिए ये 5 रुपया मैं ले आया, ये तुमको हम दान कर, मैया तुझे बेटा ये शरीर किसका है, क्या उत्तर देगा? भैया जाके जो मैंने कर रहा पिताजी समय कितने में कर रहा, देखिए जी हमारा पैदा हुआ है ये करता और हमारे पापा से रुपया चुका करती और 5 रुपया पिताजी के लिए अर्पण करता है, दिल में कुछ दान करता, इसलिए पिताजी को माता जी को दान नहीं होता, उसको क्या कहते हैं?
सेवा,
वो भी सेवा नहीं होती, उनके पैसे से उनकी सेवा नहीं होती। यदि तुम कुछ कमाई करते हो तो होगा, तो कमाई करने के लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए गंगा जलते ही हम जो कुछ देखते हैं हमारी बुद्धि विद्या पैसा धन संपत्ति ये सब प्रभु का है, तो जो ये समझता है कि ये मेरा है और फिर उससे भगवान को अर्पण करता है कि मैंने ये किया, एक फल लाया बाजार से 50 फल ले आया और अपने खाया और एक ठाकुर जी के लिए अर्पण किया, ये मेरा, इसको कहते हैं कर्म फलों का अर्पण करना। अरे तुम्हारा तुम ही नहीं है तो तू इसको आरोप सीखा, जो अपने कर्मों को अपने गुणों को अपना मान करके भगवान को दिए। अरे अभी शरीर तू ये कहता मैं भी तुम्हारा हूं, ये बच्चों भी तुम्हारी है, तुम्हारी पृथ्वी के देश के बात के लिए तुमको तुमको यहां तक तो ठीक है, वो भक्ति में आ जाए, किंतु ये दूसरा वाला जो है पहले वाला इसको आरोप सिद्धा कर, दूसरा होता है संघ सिद्धा में भक्ति के साथ में यदि वो रहता है, भक्ति वो नहीं है स्वरूप सिद्धा, किंतु भक्ति के साथ में रहने से उसका भी भक्तित्व कुछ, जैसे एक चीटी थी वो फूल में फूल पर चढ़ गई, गुलाब के फूल पर चढ़ गई और उसको लेकर के ठाकुर जी के चरणों में या सिर पर चढ़ा दिया, तो वो चीटी चीटी होकर के भी देखो ठाकुर जी के चरण पहुंच गई ना, उसी तरह से भक्ति में यदि कोई भक्ति चीज नहीं है, भक्ति के साथ में रहती है तो कभी कभी भक्ति, यहां पर हो सकता है कि कोई चोर भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि घर में खूब झगड़ा भी ऐसा हो, कुछ चोरी करने वाले भी हो, किंतु इन समाज में जब हम बैठे हैं और भागवत पाठ रहा है यहां पर लोग कहेंगे देखो ये संतों का सत्संग, इसमें उन लोगों को क्योंकि ये साधुओं का संत है, भागवत का पाठ हो रहा है इसलिए वो सब चीजें यहां पर करते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा चीज। उसी प्रकार से एक व्यक्ति खूब सदा चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलता, अपना सर्वस्व लगा देता है दूसरों की दया, स्कूल कॉलेज हर अस्पताल सब बनाता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, बहुत ईमानदार है, लोगों के को कहीं भी कष्ट नहीं दे, कुछ देख नहीं, ये सब गुण है। इसी प्रकार से 26 गुण है, 26 गुण सभी हो और एक भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो उसका क्या मूल्य है?
नहीं
क्या मूल्य है? उसका मूल्य यही है कि एक सुंदरी औरत को या सुंदरी पुरुष को, सुंदर पुरुष को समस्त अलंकारों से और कपड़ों से सुसज्जित कर दिया, किंतु उसमें प्राण नहीं, अप्राण मैं विदम अच्छे से सिलके और अच्छे से अच्छे उसको कपड़े पहना रहा और बना करके फूल के गजरों से उसे ढक दिया, चंदन इत्यादि सब लगा दिया और सोने के अलंकारों से यहां से वहां पर क्या मतलब। ऐसे ही समस्त विश्व के समस्त गुण रहे और भक्ति नहीं है तो उसका कोई गुण नहीं। तो भक्ति के साथ यदि सदाचार पिनागति सुने करोड़ सह सुना अमान और दूसरे गुण हो तो उसका मूल्य है सत बोलने का। एक आदमी बहुत सच बोलता है, बहुत सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, वो सब समय झूठी बोलता है। कर्ण सोचता है कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और कृष्ण कहता है तुमने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं। अच्छा बतलाओ ये ठीक है कि गलत है? कर्ण कभी जीवन में सच बोला? तो वो कहता है कृष्ण को मैंने जीवन में आज तक कभी सच नहीं। कृष्ण कहे तुमने जीवन में कभी सच बोला? कैसे? अरे जो सत्य चीज है उसको तो कोई तो धारण किया नहीं। दुर्योधन है क्या है? जितना असत्य है उसका मूर्ति मान लू, असत्य को तुमने तो ग्रहण किया। इधर कहता है मैंने सत्य ग्रहण किया। इसी तरह भक्ति नहीं हुई, असत गुण है उसका कुछ गुण सब तो पुष्ट में साथ में रहने से संभव है। और यदि भक्ति नहीं है और लाखों गुण है तो उसका कोई भी गुण नहीं। इधर भक्ति के साथ में यदि मिल जाए तब तो गुरु संभव सुविधा। इसी तरह से हमको विचार करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको संघ शिक्षा वाली करनी चाहिए ना आरोप शिक्षा वाली करनी चाहिए ना हमको स्वरूप शिक्षा वाली चाहिए। अब विचार कर मनुष्य तो है ही साधु संघ तो है ही रहा है कुछ कुछ शास्त्र है और शास्त्र से पूछो यदि तुमको खटता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूछो, प्रभुपाद जी से पूछो कि प्रभुपाद जी हम अभी संदेह में बोल रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, संघ शिक्षा करनी चाहिए आरोप शिक्षा करनी चाहिए या स्वरूप सिद्धा कर क्या उत्तर देंगे? चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो गृह ठाको सदा हम बोलेगा धर्म के लिए कोई बाधा नहीं। बाधा ये कुसंग, यदि कुसंग नहीं है धर्म ही सत्संग मिल रहा हो क्या? हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे आज से करीब करीब 40-45 वर्ष हम लोग आसाम में गुरु महाराज जी के साथ संशोधन करने के लिए तो हम लोग कहीं चले गए इधर पर और उन ब्रह्मचारी जी को किसी ने कहा दिया गया प्रवचन करो तो वो प्रवचन करो अरे विभाग को लोग कभी भी भजन के देखते नहीं असद आचार्य वो कभी भी भजन नहीं करो और कुछ उसको क्या किया। जब गुरु जी को पता लगा और हम लोगों को लगा तो उसे बुला करके बैठा और फिर गुरु महाराज जी ने प्रवचन किया या हम लोगों को खुद पाता हूं महाराज जी खुद महाराज जी सभी लोग उसके पद कुछ दिनों के बाद वो घर में सुख कर और हम लोगों ने पूछा कि और बतलाओ तो घर में का सामना कैसे तुम खुद का कहां नीचे चला गया तुम तो भजन नहीं कर सकते। तो जहां भी कोई रहे जय भजे भक्ति नहीं है तो त्यागी बन करके भी चाहे हरिद्वार में ऋषिकेश में बद्रीनारायण में रहो और चाहे काशी जी के तुम पर खड़े हो गए भक्ति नहीं होगा तो उसका कुछ नहीं सदाचार विद्या हो और यदि भक्ति है तो जहां भी रहो इन सात चीजों को समझने के बाद में तथा वैधिक भक्ति भी होगी और उसको ठीक ठीक हम करेंगे साधुओं का संग हो तो नाम कीर्तन करने का हरि कथा श्रवण करने का भारत में रुचि हो जाएगी गोसाइयों ग्रंथों में रुचि हो जाएगी फिर क्या होगा धीरे धीरे उन्नत होकर के वो गोस्वामी के सनातन गोस्वामी के महाप्रभु के विचारों को समझ करके भारत के उन चीजों में रुचि हो जाएगी जिसके लिए हम अपने आप रागा निगाते हैं। कुछ लोग रागा निगाते वो तो होगा ही एक दिन, आज होगा कल होगा। आज यदि अपराध हो गया और ठीक से भक्ति नहीं की, आरोप सीधा भक्ति करते रहते नहीं, इसे इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ करके भजन करने से ये चीजें आएंगी, जिसका हम लोग अभी भजन रहस्य का भजन का ये रहस्य इसलिए समझ सके। आपको एक केचुआ कोई चीज होता है हिंदी में, केचुआ किसको कहते हैं, बरसात के दिन में लंबे लंबे रहते हैं होता है ना, आगे पीछे दो इधर से हाथ कर दो तो आगे चलेगा, उधर करो तो उधर में चलता है। बरसात के दिन में होता है, बरसात खत्म दिन मर जाएंगे सब। एक आदमी को मछली पकड़नी थी तो उसमें बंसी होती है एक जैसा लोहा, उसको केंचुए को पकड़ करके और उसमें लगा करके मछली को पकड़, तो वो किसी गड्ढे में हाथ दे रहा है उसको पकड़ने के, और कहते कहते वो सांप का एक बीज मिला, बीज मैंने क्या कहते हैं मां बीज कहते हैं सर, उसमें हाथ लगाया। सांप का मंत्र नहीं जानता, पिछू का भी मंत्र नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, और हाथ लिया और सांप ने काट खाया, फिर होगा क्या, निर्धारित रूप में जरूर मत। इसलिए भजन का रहस्य नहीं जान करके जो भजन नहीं उसी को भजन कर रहे तो मरेंगे संसार में, फिर चले जाएंगे। इसलिए भजन का रहस्य समझ करके और भजन करने से क्रमशः किया होता है। और ये छह अवस्थाओं को हम लोग पांच को पार कर पार नहीं किए हैं, पढ़ना पार किया है, गुनाना नहीं पार किया है, अनुभूति नहीं हुई। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे महात्माओं की ऐसी ऐसी दशा होती है जो भावावस्था में पहुंच जाता है उसकी क्या है, उसी का वर्णन हम लोग चार पांच दिनों से कर रहे हैं। आज देख श्लोक जस्यानुराग कृतहा स्वराग मीरा और प्रतिबद्ध माना प्रजातियों दृग्धि अनुप्रदीप्त जीयो अवतत्व के कृत जिसको भावावस्था हो जाती है। अब वो क्या करता है, वो जो राजा उनके आदमी है व्यक्ति कृष्ण के जो परिकर उस कृष्ण को और उन कृष्ण के परिकरों की सत्य में चिंतन करते हैं, उनको फुर्सत नहीं है किसके तो वो क्या चिंतन करते हैं, सबसे श्रेष्ठ अनुराग ब्रजवासियों में जो भक्ति कहते हैं, भक्ति की अंतिम परिणति प्रेम, और प्रेम पुनः बढ़ते बढ़ते श्रीमान प्रणय राग अनुराग, अनुराग बहुत ही ऊंची चीज। तो जस्य अनुराग कृत हास जस्य अनुराग पुरुष जस्य अनुराग पुरुष दोनों ही कृष्ण का अनुराग और गोपियों का अनुराग जस्य दोनों प्रेम तो एक पक्षी में एक पक्षी नहीं है दो पक्षी, सर्वोत्तम राग उधर में कृष्ण रसो वही सह और इधर गोपियां प्रेम की आश्रय इनमें अनुराग अंतिम स्थिति तक। तो जब दोनों परस्पर मिलते हैं तो अनुराग से रंगा हुआ हास रास, हास माने हास जब तक चित्त उल्लसित नहीं होगा तब तक खुशी नहीं आएगी, चित्त अंतर से प्रसन्न होगा तो ये मुस्कुराने के बहाने दोनों ये विकसित हो जाते हैं अधर भाव नहीं होगा। मुख अंतर के भावों का दर्पण है, जैसा ये हृदय में रहेगा सुख या दुख वैसा ही प्रतिबिंब। तो आप लोग जानते हैं कहीं सहयोग में और वैष्णव में कहीं वाद विवाद हो गया तो वो लोग दोनों कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में कोई क्रिश्चियन जज था, उन्होंने कहा कि अपना अपना प्रमाण लेकर के कल आ जाए और उनका फोटो लेकर के आ जाए। तो दूसरे दिन वो लोग प्रमाण समस्त सारे लेकर के और दोनों का अपना अपना फोटो लेकर के आए। तो उसने प्रमाण मार्ग सब दे करके सुन लिए और दोनों का फोटो मंगा करके देखा कि शंकर जी ऐसे समारोह और इसको देखा कदम्ब के पेड़ पर बड़े आनंद के साथ में मुस्कुराता हुआ बंसी पक्षे कर बड़े मुस्कुराता हुआ इसे करके विचार करके बोला ये जो ग्वालिया लड़का है जो मुस्कुरा रहा है बड़ी भाव भंगिमा से खड़ा है, इसको कोई चिंता इत्यादि नहीं है, दुख नहीं है, ये बड़े आनंद के साथ में। और ये दूसरा है कि कोई चीज पाने के लिए किसी की समाधि में किसी के दूसरे और इसको देकर के पेड़ पर पौधे पुरुष स्त्री यहां तक कि पक्षी तक सब इसको देकर के आकर इसको मुस्कुराते हैं। ये किसी की चिंता नहीं करता, कभी उसकी चिंता करता और वो खुद बैठा हुआ किसी में चित्त लगाता, जिसमें चित्त लगा रहा है उससे वो श्रेष्ठ है। तो ये किसका हमको तो मालूम होता है कि इसी का वो इसीलिए साधारण सीधा। वो कहते हैं जस्यानुराग प्लुतहास लीला अवलोक रास, रास माने जहां पर रस है इससे रस रसे उत्कर्षण रास, जहां पर सब प्रकार के रस रस मनिया का उल्लासित होने का जो जितने भी कारण है और मिल करके उसको उल्लसित कर रहे हैं आनंद से कर रहे हैं उसको यहां पर वह रात लीला अवलोक प्रतिलब्धमाना माने क्या लब्धमाना प्रतिलब्धमाना प्रतिलब्ध माने क्या इससे कृष्ण को भी बड़ा आनंद और गोपियों को भी बड़ा आनंद प्रतिलब्ध दोनों को। और उसे क्या हुआ गोपियों में मैं माननी हूं मैं मान पाने जो भी हूं कृष्ण उनका मान कर रहे हैं उनको आदर कर रहे हैं उनके समस्त आदेशों को पालन कर रहे हैं इसलिए यहां पर माननी हूं मान पाने योग्य है किससे जब प्रम भरुद्ध सुपर आर्दिष्ट मुख रावक्षित सब व्यवस्थित कर रहे ब्रह्मा शंकर और जितने भी बड़े बड़े मुनिन्द्र हैं वो सभी लोग हजार चेष्टा करके भी साधन करके भी ध्यान में भी जिनके चरण कमलों को नहीं पा आज वो कृष्ण ब्रज में इन गोपियों को मान दे रहे हैं सुंदर सुंदर सुकांत से जब गायन करती तो कृष्ण कहते हैं साधु 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 और जब कृष्ण इनको देखते हैं कि ये रात करते 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 नित्य करते करते उनका चित्त चोरी करके और वो एकदम थक गई तो कृष्ण अपने आप उनके पत्थर बांध कर रहे उनके अस्त व्यस्त केसों को समाज में लगते हैं वो परब्रह्म इसलिए इनको मान लिया उस्मान को ही श्रीमद भागवत के 29 अध्याय में बताया एवं प्रति उनको सौभाग्य मत हुआ तो क्या श्लोक सौभाग्य मत और दूसरे को क्या हुआ मान उनका
पतितानं पावने नमो महाप्रदन्याय कृष्णे वस्त्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने बहुवत्सिते हे कृष्ण
संसार में विवाद हैं,
झगड़े हैं, लड़ाई है, शंका है, सब यदि कुछ कुछ अपना कल्याण भी समझते हैं तो नीचे के स्टैंडर्ड के कल्याण को ही हमने समझ लिया कि ये सब ये भी अज्ञान। सबसे पहला ये आता है कि यहां पर उद्धव जी कारण इसे श्लोक बलि हर कभी छह रूप आ गई। आज कृष्ण ये अपने को उग्रसेन जी को ढूंढे हैं जिनको कंस ने जेल में बंद किया और जिनको जेल में बड़ी यातनाएं दी और बेचारे कुछ न कर। और ये कृष्ण उनको उपहार दे रहे हैं, हाथ जोड़ करके वंदना कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये कृष्ण कौन है वो आज सब लोगों के सामने सभा में धर्मा सभा में उग्रसेन को दंडक प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कि आपका हमारे लिए इस दिन ही सेवक के लिए क्या आदेश है, आपको कौन से आदेश होता है। कहते हैं हमारी बुद्धि यहां पर कमित हो जाती है, सुन करके और देखते हमारी नहीं कितने बड़े बड़े भगवान हैं जैसे जैसे ग्रंथवादी हैं भगवान के भक्त को अनुभव करने वाले सभी की बुद्धि कमित और कमित हो जाती है। ये कृष्ण कौन है बड़ी हरद की चिरलो
और संतन कितने मुक्त है वो पंचमुख कहना है परंतु एक ही ने पंचमुख से पहला एक और इसके बाद में दसमुख बीसमुख कोटि कोटि मुख वाले
हिंदी में हम लड़के भी बड़े मुक्त
है कोई इतने नेत्र वाले हैं और वहां पर लाइन लगी हुई है तीन ने नेत्र वाला सबसे छोटा और पांच मुख वाला बाकी सब इतनी कोटि कोटि की भीड़ लगी है कृष्ण को प्रणाम करने के लिए लाइन लगी है किसी को जगन नहीं मिल रही है कि ये शंकर जी और ब्रह्मा जी ने देखा जी इसमें हम ही सबसे छोटे हैं देखा द्वारका की बात है किसी समय में ब्रह्मा जी आए वहां पर खड़ा था उन्होंने पूछा मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं तुमसे कह दो ब्रह्मा जी आए जरा गर्व से जैसे कि कोई यहां पर एसडीओ या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और कोई सेंटर का मिनिस्टर है जब कर देना उनसे
मिनिस्टर है
ये यूपी के मिनिस्टर है नहीं या सेंट्रल के मिनिस्टर है तो वो क्या करेगा भला हुआ दौड़ आएगा ऐसे करना ब्रह्म जी को सुनकर को कहा जी जब खबर दे दोगे ब्रह्मा जी शंकर जाकर तो उनको प्रणाम किया बाहर में ब्रह्मा जी आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं तो कृष्ण ने कुछ सोचा आप सोच करके कुछ मुस्कुराते हुए कहा कुछ करके वो भी खड़ा रहे और कुछ करके आओ कि कौन सा ब्रह्मा है पूछ रहे कौन से ब्रह्मा आप हैं आप बताओ क्या 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 ब्रह्मा है अरे चतुर्मुख ब्रह्मा
समस्त ब्रह्मा
चतुर्मुख ब्रह्मा है ये और ये ब्रह्मांड की पुष्टि करने वाला वो ब्रह्मा है तो वो गया कृष्ण का बुजुर्ग वो कहते हैं कि कठिन ब्रह्मा जी है और ये ब्रह्मांड की प्राप्ति करने वाला अच्छा कदम जी से वो गया
धर्म सभा ऐसी है उसमें लाखों करोड़ आदमी बैठे हैं और जैसी रीति होती थी उसी का अनुकूल भी वो रहे और लाखों कोटि भी अनगिनत आदमी को भी जैसा कहता था विस्कुट का विमान जो है उसमें ब्रह्मा जी आए बड़े गर्व के साथ में आए। जब प्रवेश करने लगे तो कहीं प्रवेश करने के लिए जगह नहीं
तो ब्रह्मा तबाह भर गए
वो कुछ कुछ पड़े ब्रह्मांड शंकर और ये सब भरे पड़े हैं आगे चौड़े विराट और उसने जुगनी की भांति ये प्रवेश किए उनको जगह नहीं मिली। मैं सबसे छोटा एक वहीं से गेट के बाहर से घूमने आपकी ऐसी नहीं ये कहां से आए हैं ब्रह्मा एक एक इससे कोटि कोटि गुना ब्रह्मांड है बड़ा बड़ा वहां के एक एक ये मालिक हैं इस ब्रह्मा का कोई आकार नहीं
ब्रह्मांड
बड़ी है भी चिरलोकपाल चिरलोकपाल लोकपाल कौन कौन ब्रह्मा इत्यादि कोटि कोटि रूप वाले कोटि कोटि मुकुट वाले और गिरते हैं जमीन में और झुनझुन झुनझुन उनके मुकुट के ये सब बच गए ये लोग पाल लोग वो तो लाइट है
अंदर
तो अरे सब खोल दे गर्म हवा से गर्म हवा तो ऐसे ये और ये कृष्ण आज उग्र से जिसको कंस इत्यादि भी हरा सकते हैं चारण मुष्टिक इनको मार सकते हैं अगास्त्र बकासुर ये सभी इनको तंग कर सकते हैं। आज ऐसे कृष्ण उनको प्रणाम कर रहे हैं करें ये क्या देश आपका पालन करें इसलिए बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है। सचमुच में ये कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं कहते हैं आज ये सेवक के सेवक के सेवक बने हैं उग्रसेन जैसे दुर्बल व्यक्ति के लिए बूढ़े आदमी के लिए सेवक उनको प्रणाम करते हैं चरण की धूली लेते हैं और कहते हैं ये क्या देश कभी ये देखो इस जगत में जो सेवक होते हैं अरे वो सब लिखा के खुशबू लाइट मैं तो आम सब को बंद करो दास होते हैं दास कहो सेवक कहो किंकर कहो सर्वेंट कहो ये किस लिए किसी की नौकरी किस लिए करते हैं दास किस लिए होते हैं
पेट भरने के
लिए बंद कर बंद कर किस लिए ये सेवा करते हैं जो अत्यंत दरिद्र व्यक्ति होता है जिसको कुछ नहीं है एकदम कुछ नहीं है बेचारा वो किसी के पास में रोजी रोटी के लिए नौकरी कोई खाने की व्यवस्था नहीं घर नहीं है कुछ नहीं है बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति
इसकी क्या जरूरत
है इसी में तो देर रुपया
लगा रबड़ बैंड लगा हुआ था उसमें लगा
ठीक था जब आ जाएगा तो आ जाता
ठीक है मुझे भी लटका रहेगा।
संसार में किसी भी आदमी नौकरी करता है, सेवा करता है, उसको बहुत से काम करे, तो अत्यंत व्यक्ति दरिद्र हो, गरीब हो, अपने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, दूसरे के लिए जो कुछ दे देता है वो दूसरे, ऐसे में उनके पास में सब कुछ है, खाना भी है, सब कुछ है, किंतु जैसा वो चाहते हैं भोगों को भोगना है, रहने के लिए मकान है, बाल बच्चे हैं, खाने के लिए भी कुछ है, किंतु वो यदि चाहे हमारे घर में टीवी या क्या होती है
वीसीआर
ये लग जाए, और मुझे चलने के लिए कार हो और अच्छा बंगलो हो, उसमें कूलर इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्थाओं रहे, उसमें टट्टी इत्यादि की सब व्यवस्था रहे, और रसोई बनाने के लिए नौकर रहे, और हमको पानी इत्यादि देने के लिए भी नौकर चाहकर रहे, तो इसके लिए तो पैसे की अधिक जरूरत होगी जो उसके पास है उससे बुलाए, उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, तो वो दूसरों की नौकरी करता है और उसे अपने ही भोगों को भोगता है, इसलिए वो कुछ खाने पीने के संपन्न लोग भी दूसरों की नौकरी, कुछ ऐसे भी हैं जिनको इसकी भी आवश्यकता नहीं, किंतु वो चाहते हैं कि भविष्य जीवन में भी हमको जैसा भी भोग मिल रहा है इससे भी अच्छे से भोग मिले, जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता, तो उसके लिए देवता देवियों की सेवा करते हैं। इसके बाद में परमार्थिक रूप में आने पर हम नारायण की सेवा करते हैं लोगों के लिए, ऐश्वर्य की बहुलता के लिए, और जन्म में कभी भी इस जगत में जितना भी बड़ा कोई आदमी रहे, जितना भी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति रहे, एक दिन उसको बुरा होना होगा, दांत भी टूट जाएंगे, आंख की रोशनी हो जाएगी खत्म, और इच्छा रहने पर भी लोगों की कुछ भोग नहीं सके, और उसी लिए दिल में दुखी रहे, समस्त विश्व ब्रह्मांड का राज्य मिलने पर भी हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण इत्यादि का हम देखते हैं, जिस समय में ये हनुमान जी पुष्पक विमान से घूम रहे हैं लंका में, पूज रहे हैं सीता जी, छोटा सा रूप बना और घूम रही है सीता जी का, अभी विभीषण से भी भेंट नहीं है, और घरों घरों में जाकर के देख रहे हैं, सब घरों में जाकर के सीता को ढूंढा, देखा एक घर में बड़े से कब समय देखा, अपूर्व सुंदरियां सब बेहोश पड़ी है, कपड़े तन पर नहीं, और सभी के मुख में मक्खियां इत्यादि बैठी, सुरापान किए, और एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सुपुरुष बीच में सुरापान करते, और उसके पास में अपूर्व एक सुंदरी है, सब प्रकार से सुंदर, वो भी मंदिरा पान करके अतीत होकर के सो रही, उस समय कोई लज्जा इत्यादि नहीं है सोने में, तो उस समय कोई लज्जा नहीं जाती है मंदिरा पान करने, उन्होंने देखा ये जो सो रही है सुंदरी, मन में तो यही सीता जी, तो यह नहीं सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सूरा पान नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकती, उनको भोगे की कोई लालसा ही नहीं, इसलिए कदापि सीता जी, बस यही पर उनका संसार में सभी लोग अधिक से अधिक आनंद पाने के लिए भी जगत में सुरा सुंदरी इत्यादि का सेवन करते, इसीलिए देवताओं की आराधना करते हैं इस चीज को पाने के लिए, किंतु राम जब नहीं सुखी हो सका, जबकि हिरण्यकश्यप और नक्ष भी नहीं हो सके, इतना बड़ी बवाल। तो हम लोगों की बात ही अब यहां पर ये विचार कर रहे हैं, ये जो कृष्ण जो इनकी सेवा कर रहे हैं इनमें जरूर कुछ कमी होगी, तब तो ये उग्रसेन की सेवा कर रहे हैं, इसलिए तो आज विकास मिलता है, तो गरीब दो तो है। दूसरी बात, ये साधारण संपन्न भी व्यक्ति नहीं है, जिनको और कुछ चीज की आवश्यकता है, भोगों की लालसा की। जैसे कृष्ण ये प्रार्थना करें कि हमारा जौवन चीर बना रहे, हमारी कुछ रूप भी बना रहे ऐसे, और हमें किसी प्रकार का दुख न हो, और हमारा पास ऐश्वर्य भी बना रहे, क्या इसलिए इनको प्रणाम कर रहे हैं? अरे जिनके लिए तो ब्रह्मा इत्यादि ऐश्वर्य संपन्न सब लोग कोटि कोटि रूपों से इनके आगे प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण इनको नहीं कर रहे। अच्छा, उनको मुक्ति या भोग या मुक्ति की आवश्यकता है? ये कृष्ण कैसे हैं? स्वयं तु अशाम्य, स्वयं तु अशाम्य अतिशयात्र भी सह। अरे ये कृष्ण ऐसे हैं अशाम्य अतिशय असमोर्थक, इनके बराबर विश्व ब्रह्मांड में कहां तक? वैकुंठ उससे ऊपर, गोलोक तक की चरम सीमा तक कोई भी परम पुरुष भी, भगवत तत्व भी इनके बराबर नहीं है, और उनसे अधिक की तो बात सब विषय है। वो कैसे हैं? असाम्य कोई अक्षर, उनके न तो कोई समान है और न तो उनसे किसी भी विषय में बढ़ सकते। दो चीज होती है इस जगत में, किसी के साथ हम जब तुलना करते हैं तो ऐश्वर्य के द्वारा तुलना करते हैं, अब ऐश्वर्य से तुलना करेंगे तभी तो हम देखेंगे कि उससे हमारी कमी है, तो हम उसकी सेवा करके उससे हम कुछ पाएंगे। कृष्ण का सब तो कोई बड़ा है ही नहीं है, तो इस काम के लिए वो सेवा करेंगे। ऐश्वर्य भी एक जगत का ऐश्वर्य जो नष्ट हो जाता है, किसका कोई मूल्य नहीं होता। वैकुंठ का ऐश्वर्य एक होता है जो नारायण का, उससे अधिक राम का, उससे भी अधिक गुरुपति का ऐश्वर्य, किंतु इन लोगों में माधुर्य की कमी है, किंतु कृष्ण में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों की चरम सीमा तक, ऐश्वर्य भी है और माधुर्य जो और किसी भगवत तत्व में नहीं है। ब्रह्मा और शंकर और दूसरे तत्वों की या मनुष्यों की तो बात की जाती है, कोई भी व्यक्ति इस संसार का, किसी भी एक व्यक्ति की कोई भी एक लालसा को पूरा नहीं कर सकता। और की तो बात क्या है, आज का जो जन्म हुआ शिशु है उसको यहां का राष्ट्रपति है, उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या करेंगे? वो कह रहा है जैसे हमारे पेट में बहुत दर्द है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? क्या करें? वो कहेगा जैसे हमको क्रोध हो रहा है, हमको क्रोध ना हो, राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक जनरल भी क्या करेगा, विश्व ब्रह्मांड मिल करके उसको क्या करेगा? एक छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो हम लोगों की इच्छा की तो बात ही अलग है, नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण कैसे हैं? इस ऐश्वर्य और माधुर्य में स्वयं कैसे हैं? स्वराज लक्ष्य आप समस्त काम, स्वराज लक्ष्मी जिनके सक्ष में सेवा करती है,
स्वराज लक्ष्मी मैंने स्वराज, स्वराज में होता है स्वयं रूपी ने जहां राजते इतनी स्वराज। ऐश्वर्य और माधुर्य की जितनी चरम शक्तियां हैं जो कुछ भी है जिनमें स्वयं रूप में जिनकी सेवा करके उनमें विराजमान रहती है सब समय, जिनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, न ऐश्वर्य की कमी होती है। ऐश्वर्य छह प्रकार का, ऐश्वर्य समस्त बीज जस स्त्री ज्ञान, ये छह चीजें, ये सब संपूर्ण रूप से कुछ। और क्या है माधुर्य, माधुर्य किस रूप में, प्रेम का आस्वादन। जगत में सभी प्रेम के दुखे हैं, बिना प्रेम का सुख हो ही नहीं सकता। एक कुत्ते को हम प्रेम करते हैं ना तो वो कुत्ता क्या करता है, और खुरखुर करते हैं तो क्या करता है, निराश होकर के बेचारा दुखी होकर के लौट जाता है। कोई व्यक्ति किसी को शासन के द्वारा रुपये पैसे के द्वारा चिरकाल के लिए वशीभूत नहीं कर सकता, किंतु प्रेम के द्वारा उसको वशीभूत। इस जगत में प्रेम नहीं है काम है, इसीलिए लोग किसी के किसी के वशीभूत नहीं है। केवल वो हो सकते हैं जो भजन के द्वारा आत्म उपलब्धि की है और कृष्ण का वो प्रेम कुछ जिनको मिला है वो बस हैं, वो सबको भी वशीभूत कर सकते हैं, अपने चित्त को भी वशीभूत कर सकते हैं। कृष्ण में ये जो चीज है परिपूर्ण रूप से है, क्यों उनके साथ सब समय समस्त भावनाओं को लिए हुए माधुर्य भाव इत्यादि। राधा जी लक्ष्मी है ना, कैसी लक्ष्मी, स्वराज्य लक्ष्मी में भी वो सुख शक्ति वाली मूल समस्त लक्ष्मियों को भी लक्ष्मी वहां पर राधा जी हैं, और जहां उनको कृष्ण के काम को पूर्ण कर रही हैं वहां कृष्ण को और चीज की लालसा कहां से हो सकती है, हो सकती है। इसलिए कहते हैं ऐसे ये कृष्ण हैं जिनके संपर्क मात्र से जगत आनंदित है, सबको आनंद देते हैं, वही परब्रह्म है, ब्रह्मति ब्रह्मयति च, वो सबको बढ़ाते हैं, आनंददायी और आनंद देते हैं, और सात समय अपने आनंदित होते हैं जिस शक्ति के द्वारा, उन्हीं का नाम है लादनी शक्ति। ये लादनी शक्ति क्या करती है, अपने महाभाव के दोनों भावों से अंतिम रूढ़ भावों से अधिरूढ़ भावों से इसके ऊपर के भावों से जो और किसी भी में नहीं है, यहां तक ललता विशाल था नहीं, उन भावों से कृष्ण को आनंद में परिपूर्ण करती रहे। इसलिए स्वराज लक्ष्मण आपका समस्त काम कृष्ण के जितने भी कामनाएं हैं पुराणा जी पूर्ण करती हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे कृष्ण को किसी से क्या जरूरत है, हमको जरूरत है सब लोग आदर करते हैं, कभी पैसे की जरूरत हो सकती है, अच्छा है लोग हमको प्रतिष्ठा की जरूरत है, हमें किसी भोग की जरूरत है, राष्ट्रपति भी है ना उनकी भोग की कामनाएं भी पूरी नहीं हो, कोई मिनिस्टर का भी नहीं, वो कहते हैं कि अगर आज यदि पूछी हट जाए तो साधारण मनुष्य सुख जाता है। इसलिए कृष्ण ऐसे होने पर भी आपको समर्थ कर रहा हूं, राधा जी अपने कोटि कोटि भावों की कोटि कोटि गोपियों के साथ में कृष्ण की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर रही है, अपने कृष्ण के इच्छाओं पर कोटि कोटि प्राणों को निमंत्रण कर रही है। राधा जी कोटि कोटि गोपियों के रूप में, सभाओं के रूप में, शक्तियों के रूप में, माता पिता के रूप में, वृंदावन के सब करुणलता गुणलता के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा उनकी इच्छा को पूर्ण कर रही है, यह सब राजा जी कर रहे हैं, उनको कोई कामना की समय नहीं, उनको किसी चीज की कमी नहीं, वे श्याम निवासी है, उनके बराबर भी कोई नहीं है, समान की कोई बात नहीं। ऐसे ये त्रैधीश हैं, त्रैधीश मैंने के भूल हुआ तो आप तीन ये लोग कौन थे? नहीं ये क्या
वैकुंठ द्वार का
अपनी शक्ति चित शक्ति जीव शक्ति माया इन तीन शक्ति सब शक्ति जीव शक्ति माया अप्रासंगिक वाणी ये तीन शक्ति हैं प्रॉप्य अभिकात्र तीन और कुछ नहीं दिया इसलिए ये सब और गुरु के अंतर्गत द्वारका मथुरा और वृंदावन में बढ़ने जो ऐसी ऐसी माधुर्य और ऐश्वर्य की जो मिलाएं चंद्रता जिसका जी एक कण भी पा करके न्याय हो जाता है जो इस जगत में कल्पना नहीं कर सकता जब साधन अवस्था में हम लोग भी भगवान का दर्शन नहीं पाए जिनके लीला कथाओं के स्वामी कितना आनंद है कि बच्चे सब घर छोड़ देते हैं अच्छे अच्छे कर्मों के और समस्त विश्व का वैभव छोड़ देते हैं अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं लड़कियां की ऐसी मीरा बाई इत्यादि का अभी भी हैं सर्वस्व विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ ब्रह्मा जी के चरणों की सेवा करने के लिए ऐसे ये प्रेजेंट हैं ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं कैसी और किसको बात छोड़ दीजिए कहते हैं ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं तो क्या है स्वतंत्र लगता है चिंतन जब उगाए नारायण शिव अंगों का अरे लक्ष्मी जी जिसकी कृपा को इतनी जन तपस्या करते हुए भी नहीं पा सकते लक्ष्मी देश बल में भी तपस्या करते उस कुछ न को नहीं पा सकते रुक्मिणी शक्तभाना भी जिसको 16108 महर्षियां की जिनके रूप और गुण में विश्व ब्रह्मांड की कोई तुलना नहीं हो सकती विश्व ब्रह्मांड क्या लक्ष्मी और भगवान की और क्रियाओं से भी तुलना नहीं ऐसी ऐसी अपूर्व गुणवती रूपवती भी कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते उनके तरफ से भी कृष्ण तटस्थ बने हैं इन गोपियों ने न जाने कैसी तपस्या न जाने क्या थी जो और लोगों को जो सेवा प्राप्त नहीं थी वैसे इन लोगों गोपियों क्या हुई जो कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक नत करते हैं ऐसे बहुत दूर से ध्यान करते हैं तब उन्हें और वो कृष्ण उनसे प्रेम की भीख मांगने के लिए उनके गले में शिशु जैसे हाथ दे करके और ऐसे तुम लोग चली जाएगी तो हमारा तुम्हें तुमसे मैं प्रेम की भीख मांगता और उस प्रेम के लिए मैं तुम लोगों का किस दिन के लिए ऋण हूं ऐसे वो कृष्ण और वो आज हमारी बुद्धि को ग्रस्त कर रहे हैं मुंह ग्रस्त कर रहे हैं ये साधारण अप्रूप उनके यहां कुंद्र से जो ये प्रणाम करते कर रहे हैं कि आप इसे जिसके लिए उद्धव जी कहते हैं आखा महो चरण वृंदावने जन स्वजन आदि श्रुतियां जिनके चरणों की जिसकी पदवी के लिए पाने के लिए श्रुति वेद ब्रह्मला को तो छोड़ दो ब्रह्मांड वेद वाणियों की सख में आराधना करो और वो उपनिषद भी वेद की रूप धारण करके प्रार्थना करते करते जाएंगे कितने करोड़ों वर्ष तक तपस्या की किंतु कृष्ण के चरण कदमों की का वो ध्यान ही नहीं दर्शन पा सके हृदय में और वो कृष्ण गोपियों के चरणों में नत होते हैं उनको कृष्ण को ऐसे कृष्ण को गोपियां अपने प्रेम के मारे उन्माद से कहती हैं चले जाओ यहां से जाने जाने चले जाओ ऐसे कहा और प्रेम उन्मत्तों पर कहती हैं हमारे चरणों का भाव पूछ गया है, इसे फिर से बना लो। वो हमारे नूपुर घर में छिटक गए हैं, उसको ले आकर के पहना दो। और कृष्ण इसको इस सेवा को करते थे एकदम अपने को सफल से ऐसे ही प्रेम के ऐसे गोपियों ऐसे गोपियों की चरण धूलि को पाने के लिए यदि मैं वृंदावन में किमत दूर मिलवा पाऊ सकूंगा। वृंदावन में कहीं लताओ और दूर के रूप में हमारा है और गोपियां चलते फिरते तब उनके पैर की धूली हमारे सिर लताओ गुण में मिल गया था हमारा जीवन। ब्रह्मा तो कहते हैं कि यदि गोकुल में संभव नहीं है वृंदावन में तो गोकुल में भी कहीं भी अरे नहीं है तो हड्डियां हड्डी कमाने वाली जो जमात आदमी है जो शक्ति कमाती है वही वो करके उन्हीं के चरणों की धूली मुझे मिल जाए और वो पैखाना साफ करके आए तो पैर को धोने के लिए एक पत्थर की जरूरत थी उसको पानी डाल करके और पैर को रगड़ देते मैं तो त्यौहार फट जाए तो उसी वही पत्थर होकर के जन्म लू जिससे कि गोपियां उसी पर रगड़ करके पैर धोए हमारा जीवन की ऐसे ऐसे आज वो कृष्ण इस उग्रसेन के दास बन रहे हैं। क्यों ये दास होना बुरी बात है ना पते इस जगत में तो पैसे से हम दासों को करते हैं और उस जगत में ही दासों को मिलेगा तो फिर क्या उसी बड़ी वाली बात है दासों करके मैं ब्रह्म होना चाहूंगा या हम ब्रह्मास्मि तो बड़ी पत्नी रहेगी जब किसी को सेवा नहीं करती ऐसी ये बड़ी सेवा है ये भजन का अर्थ है। ऐसे कृष्ण का जो भजन करेगा जगत का तो भोग बिखर जाएगा शरीर का रूप भी बिखर जाएगा बुद्धि भी बिखर जाएगी सब कुछ नष्ट हो जाएगी कुछ भी होंगे अधिक दिन नहीं है जन घूम रहा है व्यवस्था का सब कुछ को लेना है और जरा देवी घूम रही है विवाह करने के लिए जरा देवी मैंने को दे रही एक एक को चुन गई नारद जी तो भगे भग गए किंतु हम लोग कहां भागेंगे वो तेज भी है बड़ी दौड़ करके पकड़ गए जबरदस्त इसलिए उसके पहले ही भाव के साथ में भगवान का भजन करने की ये बुद्धिमाना कुछ पशु होते हैं और कुछ मनुष्य होते हैं पशु और मनुष्य में अंतर है पशु भविष्य नहीं देखता फल क्या होगा अभी क्या होने वाला और मनुष्य कुछ भविष्य की ही चिंता करता लिखता किस लिए कि मैं मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं नौकरी किस लिए करता है कुछ पैसे मिलेंगे अपना परिवार कुछ दूर की सोचता है अंततः एक जन्म की इस जन्म की बातें कुछ सोचता है किंतु ये लोग भी पशु के ही समान है पशु को मान ला कि 100 बूढ़ी जर्थ गायों को या भैंसों को या भैंस को कसाई लोग ले जाए और कलकत्ते में जहां पर कि वो मशीन लगी है उस फाटक के बाहर में रख देते हैं और नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 सब नंबर देकर तो वहां पर और हरी घास डाल देते हैं थोड़ी सी किस लिए वो लोग भी उस हरी घास के लिए लड़ते हैं एक दूसरे को सिंह से ऐसा करते हैं वो ये नहीं जान रहे हैं कि अभी भी तक जाना है और अभी जो हमारे जो गए उनकी क्या दशा हुई है वो नहीं समझते उसमें से थोड़े थोड़े ले जाते हैं और ये लोग निष्पाते उस थोड़ी सी घास के लिए जो दुर्बल है उसको कुछ सबल है उनको मारे खा रहे उनको इसी प्रकार से हम लोगों की दशा हमको घर में जाना है किंतु हम लोग सोच नहीं पाते जो भविष्य की चिंता करके देखता है कि इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं वो लोग भगवान करते हैं किस लिए अब नहीं तो मूर्ख लोगों के लिए भगवान का जिनकी बुद्धि अत्यंत परिपक्व है अच्छे से समझने में समर्थ हैं ऐसे लोग, और उसमें भी भगवान के भजन में भी कितने तरह के भजन हैं, देवता देवी से लेकर के भगवान के अंशावतारों का, अवतारों का, युगावतारों का, मन्नावतारों का, लीलावतारों का, गुणावतारों का, आवेशावतारों का, इस तरह से पथ के ऊपर तक चले जाएंगे। ये अंत में कृष्ण जो सबसे परम बुद्धिमान होता है, ऐसे ऐश्वर्य और माधुर्य के द्वारा परिपूर्ण रूप से परिमंडित जो कृष्ण है, जो अपने सेवकों के भी सेवकाई को देकर के उसके प्रशिक्षित होकर उसकी सेवा करते हैं। इसलिए इसके बाद ही का श्लोक है, अहो बकीयं संताल दिखंस अपाय प्रसादी ले कंगा दयालु शरण। उतना दिन को मारने के लिए गई, तन में काल कुट बीस लगाकर और प्रभु ने दया करके उसको अपनी मातृ समान भक्ति उचित गति उसको दे। बदलाव कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसे कृष्ण की आराधना नहीं करे। कृष्ण कहां दिखता है? अरे देखता तो सभी कुछ नहीं, अभी तो तुम्हारी आत्मा भी नहीं दिख रही, न तुम्हारा प्राण दिखता है, तुम्हारी पीठ भी नहीं दिखती, अपनी आंखें भी नहीं दिखती, भीतर का कुछ भी नहीं दिखता, तो सब तुम मानेगा नहीं? अनुमान से तो माना जाएगा कि इस जो चलाने उसको तुम अनुमान से नहीं देख पा रहा, इसलिए कृष्ण का वर्णन करना चाहिए। यही समस्त चतुर्ता में भी अभी हम लोग जगह जाना है।